एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार। तो आज हम जॉन कैररो की तहकीकाती किताब बैड ब्लड, सीक्रेट्स एंड लाइज इन अ सिलिकॉन वैली स्टार्टअप पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है एलिजाबेथ होम्स की।
जी हाँ, थेरानोस की संस्थापक और पूर्व सीईओ। एक समय था जब वो दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति मानी जाती थी।
और फिर सब कुछ बदल गया, एक बहुत बड़े धोखाधड़ी कांड में दोषी पाई गई।
बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कंपनी के बनने और बिगड़ने की कहानी नहीं है, मतलब इसे एनरॉन के बाद कॉरपोरेट जगत की शायद सबसे बड़ी धोखाधड़ियों में गिना जाता है।
हाँ, मतलब इसका असर बहुत गहरा था।
बहुत गहरा। ये कहानी सिलिकॉन वैली की उस मशहूर संस्कृति फेक इट टिल यू मेक इट, यानी जब तक असली ना बन जाए नकली ही सही, उस पर भी गंभीर सवाल उठाती है।
सही कहा।
ये दिखाती है कि कैसे बेलगाम महत्वाकांक्षा और एक लुभावनी कहानी का जादू, मतलब बड़े बड़े निवेशकों, वैज्ञानिकों, यहाँ तक कि राजनेताओं को भी गुमराह कर सकता है।
और अंत में तो मरीजों की सेहत खतरे में पड़ गई।
बिल्कुल, जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है।
तो चलिए कहानी की तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं एलिजाबेथ होम्स के शुरुआती सालों से। उनका बचपन वॉशिंगटन डीसी और ह्यूस्टन में बीता।
जी, और उनका परिवार काफी प्रभावशाली था, महत्वाकांक्षी भी। पिता यूएसएआईडी जैसी सरकारी एजेंसियों में काम कर चुके थे, एनरॉन में भी वाइस प्रेसिडेंट रहे उसके पतन से पहले।
अच्छा।
और माँ कांग्रेस कमेटी स्टाफ में थी। परिवार में कहानी भी चलती थी कि वो मशहूर फ्लाइशमैन्स यीस्ट के संस्थापक के वंशज है।
ओह, तो मतलब एक महानता का भाव शायद पहले से ही था।
हाँ, लगता तो है। शायद इन सब बातों ने एलिजाबेथ में बचपन से ही कुछ बहुत बड़ा करने की इच्छा जगा दी थी।
सुना है उन्होंने बचपन में अपने पिता को खत भी लिखा था।
जी हाँ, सिर्फ 9 साल की उम्र में।
उसमें लिखा था कि वो कुछ ऐसा खोजना चाहती हैं जो मानवता को असंभव लगता हो।
अरे वाह, 9 साल की उम्र में ऐसी सोच।
बिल्कुल। और बड़ी होकर वो स्टीव जॉब से काफी प्रभावित हुई। कॉलेज छोड़ना, दुनिया बदलने वाली कंपनी बनाना, एक खास पब्लिक इमेज, ये सब उनके दिमाग में था।
तो फिर पढ़ाई का क्या हुआ? स्टैनफोर्ड गई थी वो।
हाँ, 2002 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने गई। प्रेसिडेंट स्कॉलर भी बनी। उन्हें प्रोफेसर चैनिंग रॉबर्टसन जैसे अच्छे मार्गदर्शक भी मिले।
और थेरानोस का आइडिया वो कैसे आया?
कहते हैं कि उन्हें सुइयों से डर लगता था, तो उसी से ये आइडिया आया। पहले तो एक पहनने वाले पैच का विचार था, पर बाद में ये एक ऐसी मशीन की सोच में बदला जो उंगली से बस एक बूंद खून लेकर सैकड़ों टेस्ट कर सके।
सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है।
बिल्कुल। और इसी आइडिया के लिए उन्होंने 2003 में सिर्फ 19 साल की उम्र में स्टैनफोर्ड छोड़ दिया।
19 साल में? कमाल है। हाँ, और अपने माता पिता की बचाई ट्यूशन फीस से कंपनी शुरू की। पहले नाम था रियल टाइम क्योर्स, जो बाद में थेरानोस बना, थेरेपी और डायग्नोसिस को मिलाकर।
और प्रोफेसर रॉबिन्सन, वो भी जुड़े रहे।
जी, प्रोफेसर रॉबिन्सन उनके जुनून से इतने प्रभावित हुए कि वो कंपनी के पहले बोर्ड मेंबर बने। इससे स्टार्टअप को शुरू में काफी विश्वसनीयता मिली।
तो यहाँ से कंपनी का सफर शुरू हुआ।
हाँ, और यहीं से थेरानोस के कथित उत्थान का दौर शुरू हुआ, जो करीब एक दशक तक चला। लेकिन ये पूरा सफर, जैसा किताब बताती है, गोपनीयता और धोखे की नींव पर टिका था।
मतलब स्टेल्थ मोड में काम किया।
बिल्कुल, सब कुछ गुप्त। एक ऐसी तकनीक के इर्द गिर्द रहस्य का जाल बुना गया जो असल में कभी ठीक से काम ही नहीं कर पाई।
लेकिन उनकी पिच तो बड़ी जबरदस्त थी। सस्ता, दर्द रहित, तुरंत ब्लड टेस्ट।
हाँ, पिच तो अविश्वसनीय रूप से आकर्षक थी। स्वास्थ्य सेवा में क्रांति, आम आदमी तक पहुंच, जाने बचाना, कौन निवेश नहीं करना चाहेगा?
और उनकी अपनी इमेज, वो काले टर्टल ने एक भारी आवाज।
हाँ हाँ, वो सब बहुत सोचा समझा था। स्टीव जॉब्स की नकल, दुनिया बदलने की बड़ी बड़ी बातें, ये सब उनकी शख्सियत गढ़ने का हिस्सा था।
और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें कौन लोग थे?
ये भी दिलचस्प है। उसमें वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञ कम थे, ज्यादातर जॉर्ज शुल्ट्स, हेनरी किसिंजर, विलियम पेरी, जेम्स मैटिस जैसे बड़े राजनीतिक और मिलिट्री के नाम थे।
मतलब अनुभव से ज्यादा रुतबे पर जोर था।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि होम्स की प्राथमिकता क्या थी। विश्वसनीयता बनाना और दरवाजे खुलवाना शायद तकनीकी सच्चाई से ज्यादा जरूरी समझा गया।
और निवेशक, वो कैसे आए?
निवेशक तो जैसे खिंचे चले आए। टिम ड्रेपर, लारी एलिसन, रूपर्ट मर्डॉक, बड़े बड़े नाम, करोड़ों डॉलर का निवेश हुआ।
और कंपनी का वैल्यूएशन, वो तो आसमान छू गया था।
हाँ, बढ़ते बढ़ते 9 अरब डॉलर तक पहुंच गया। होम्स रातों रात दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति बन गई। कम से कम कागज पर तो यही था।
फिर वो वॉलग्रीन्स और सेफे वाली पार्टनरशिप हुई है
जी 2013 में। ये बहुत बड़ी खबर थी। इसने थेरानोस को सीधे ग्राहकों तक पहुंचा दिया। वेलनेस सेंटर खोलने की योजनाएं, मतलब जबरदस्त कामयाबी दिख रही थी।
लेकिन ये सब भी,
हाँ, जैसा बाद में पता चला, ये सब भी धोखे पे ही आधारित था। पर्दे के पीछे की हकीकत बिल्कुल अलग थी।
क्या चल रहा था कंपनी के अंदर?
अंदर पालो ऑल्टो के हेडक्वार्टर्स में वैज्ञानिक लगातार फेल हो रहे थे। मशीनें काम नहीं कर रही थी, प्रदर्शन नकली किए जाते थे। और कंपनी के अंदर होम्स और उनके साथी और कंपनी प्रेसिडेंट सनी बलवानी ने डर और धमकी का माहौल बना रखा था।
सनी बलवानी,
हाँ
जी।
जो भी सवाल उठाता उसे चुप करा दिया जाता या निकाल दिया जाता।
तो ये सब कब तक चला, मतलब ये बुलबुला का फूटा?
2015 में चीजें बदलनी शुरू हुई। वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार जॉन कैरोरो ने एक पूर्व कर्मचारी से मिली टिप के आधार पर जांच शुरू की।
अच्छा, विसल रुआ।
हाँ, और फिर टाइलर शुल्ट्स, जो बोर्ड मेंबर जॉर्ज शुल्ट्स के पोते थे, और एरिका चोंग जैसे और विसल ब्लोअर्स सामने आए। इन युवाओं ने बहुत हिम्मत दिखाई।
उन्होंने क्या बताया?
उन्होंने बताया कि थेरानोस की अपनी एडिसन मशीनें भरोसेमंद नहीं है, बहुत कम टेस्ट कर पाती हैं। ज्यादातर टेस्ट तो असल में सीमेंस जैसी दूसरी कंपनियों की बनी बनाई मशीनों पर किए जा रहे थे।
क्या मतलब, अपनी मशीन काम ही नहीं कर रही थी?
न के बराबर। और वो भी उंगली से लिए गए खून के छोटे नमूनों को खतरनाक तरीके से पतला करके। इससे नतीजों के गलत होने का भारी खतरा था।
ये तो बहुत ही भयानक बात है मरीजों के लिए तो।
बिल्कुल, सोचिए गलत नतीजों का क्या असर हुआ होगा।
जाहिर है थेरानोस ने इन आरोपों को मानने से इनकार किया होगा।
इनकार ही नहीं किया, उन्होंने पूरी ताकत से पलटवार किया। मशहूर वकील डेविड बॉयस को हायर किया गया। विसिल ब्लोअर्स और पत्रकारों को कानूनी धमकियां दी गईं, निगरानी करवाई गई, डराया धमकाया गया।
होम्स ने तो सुनाया रूपर्ट मर्डॉक से भी बात की थी, जो खुद निवेशक थे और WSJ के मालिक भी।
हाँ, खबर रुकवाने की कोशिश की, लेकिन
खबर रुकी नहीं।
नहीं रुकी। 15 अक्टूबर 2015 को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कैरेरो का पहला लेख छाप दिया और उसने थेरानोस के बनाए पूरे मायाजाल को तोड़ दिया।
दुनिया के सामने सच आ गया।
हाँ।
पता चल गया कि उनकी क्रांतिकारी तकनीक महज एक छलावा थी। इसके बाद तो FDA, CMS जैसी नियामक एजेंसियों की जांचें शुरू हुई।
और जांच में क्या निकला?
जांचों ने विफलताओं और सुरक्षा उल्लंघनों की पुष्टि कर दी। फिर तो नतीजे तेज और विनाशकारी थे।
जैसे कि वॉलग्रीन, सेफवे सबने अपनी साझेदारियां खत्म कर दी। होम्स पर लैब चलाने पर पाबंदी लग गई। कंपनी को पिछले 2 सालों के लाखों ब्लड टेस्ट के नतीजे रद्द करने पड़े।
बाप रे, लाखों टेस्ट रद्द?
जी हाँ, और वो जो $9 अरब का वैल्यूएशन था वो देखते ही देखते शून्य हो गया।
और फिर कानूनी कार्रवाई?
बिल्कुल, 2018 में SEC ने होम्स और बलवानी पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। फिर आपराधिक आरोप भी लगे, वायर फ्रॉड, साजिश। सितंबर 2018 में थेरानोस कंपनी आधिकारिक तौर पर बंद हो गई।
और सजा?
2021 में होम्स का मुकदमा चला। जनवरी 2022 में उन्हें निवेशकों को धोखा देने के 4 मामलों में दोषी पाया गया। सजा मिली 11 साल से ज्यादा की जेल।
और सनी बलवानी?
सनी बलवानी को भी एक अलग मुकदमे में धोखाधड़ी के सभी 12 मामलों में दोषी पाया गया और उन्हें लगभग 13 साल की जेल हुई।
तो ये तो हुआ कि क्या हुआ, कंपनी बंद, सजा हो गई। लेकिन दिमाग में ये सवाल बार बार आता है कि आखिर क्यों? क्या सोच थी एलिजाबेथ होम्स की? उनके मूल्य क्या थे? उनका तरीका क्या था?
ये इस कहानी का सबसे अहम सवाल है ना? अगर आप सतह पर देखें तो होम्स का जो दर्शन था वो बड़ा आकर्षक लगता था। स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाना, उसे सस्ता और सुलभ बनाना, मरीजों को ताकत देना।
हाँ, मतलब मिशन तो नेक लगता था कि किसी को जल्दी अलविदा ना कहना पड़े।
बिल्कुल, घोषित मिशन नेक था, लेकिन बैड ब्लड किताबें एक अलग ही तस्वीर दिखाती है। ऐसा लगता है कि उनकी असल सोच माकियाविलियन थी, मतलब मंजिल हासिल करने के लिए कोई भी रास्ता, कोई भी साधन जायज है।
तो मतलब झूठ बोलना, नतीजों में हेरफेर करना, कर्मचारियों को डराना, ये सब मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी समझा गया?
लगता तो यही है। किताब के हिसाब से होम्स को अपनी नियति पर, अपने डेस्टिनी पर अटूट विश्वास था। उन्हें शायद लगता था कि वो अंत में सफल होंगी ही, इसलिए ये सब तिकड़में उस महान लक्ष्य के सामने छोटी थी।
उन्होंने एक तरह का वास्तविकता विकृति क्षेत्र बना लिया था, है ना, जैसा स्टीव जॉब्स के बारे में भी कहते हैं।
हाँ, कुछ वैसा ही, जहाँ वो अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को ही सच मानकर चलती थी और दूसरों को भी मनवा लेती थी। वैज्ञानिक तथ्यों के बजाय कहानी गढ़ने पर जोर था, और जो भी सबूत उनकी कहानी के खिलाफ जाता उसे दबा दिया जाता या नजरअंदाज कर दिया जाता।
और उनकी प्रेरणा क्या सच में वो मानवता की भलाई चाहती थी या कुछ और था?
घोषित तौर पे तो मानवता की भलाई ही थी, लेकिन किताब इशारा करती है कि शायद गहरी प्रेरणाएं कुछ और थीं। सिर्फ अमीर बनना नहीं बल्कि इतिहास रचना, स्टीव जॉब्स या थॉमस एडिसन की तरह।
मतलब प्रसिद्धि, प्रशंसा।
हाँ, मैगजीन कवर, महान लोगों से तुलना, इन सब की शायद उन्हें चाहत थी। और सबसे बढ़कर नियंत्रण की जरूरत, अपने कर्मचारियों पर, बोर्ड पर, निवेशकों पर, और सबसे ज्यादा अपनी कहानी पर।
तो जब विज्ञान ने साथ नहीं दिया
तो उन्होंने अपनी ही एक काल्पनिक वास्तविकता गढ़ ली।
और जब मुश्किलें आती थी, चुनौतियां आती थी, तब उसका सामना कैसे करती थी वो?
उनका तरीका अलग था। वो चुनौतियों को हल करने के मौके की तरह नहीं बल्कि अपनी महत्वाकांक्षा के लिए खतरे की तरह।
मतलब?
जैसे तकनीक फेल हुई तो समाधान ये नहीं था कि तकनीक ठीक करो, समाधान था नतीजे नकली बना दो, जैसा उन्होंने नोवार्टिस डेमो में किया, या फिर चुपके से प्रतिस्पर्धियों की मशीनें इस्तेमाल कर लो।
अच्छा,
कर्मचारियों ने चिंता जताई तो उन्हें चुप कराओ, नौकरी से निकाल दो, वकीलों से धमकी दिलवाओ। उनकी प्रतिक्रिया अक्सर शक और आक्रामकता से भरी होती थी।
बिल्कुल, हाँ, वो डर के माहौल वाली बात।
बिल्कुल, विभागों को एक दूसरे से अलग रखना, ईमेल पर नजर रखना, डर का माहौल बनाना, ये सब उनके नियंत्रण बनाए रखने के तरीके थे। ऐसा लगता है कि मिशन के प्रति वफादारी वैज्ञानिक सच्चाई से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी।
इस पूरी हैरतअंगीज कहानी में कुछ ऐसे पल जरूर आए होंगे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। वो निर्णायक मोड़ कौन से थे?
हाँ बिल्कुल, तीन ऐसे बड़े मोड़ साफ नजर आते हैं। पहला था 2006 में नोवार्टिस के लिए वो नकली डेमो।
अच्छा, वो वाला?
हाँ, वो शुरुआती दिन थे। थेरेनोस को विश्वसनीयता चाहिए थी। प्रदर्शन के दौरान प्रोटोटाइप फेल हो गया। तब होम्स ने टीम को निर्देश दिया कि वो स्क्रीन पर पहले से रिकॉर्ड किया हुआ सफल नतीजा दिखा दे।
ओ, मतलब ये जानबूझकर किया गया धोखा था। बिल्कुल, और ये वो क्षण था जब कंपनी सिर्फ एक महत्वाकांक्षी स्टार्टअप से आगे बढ़कर सक्रिय धोखाधड़ी के रास्ते पर चल पड़ी। इसने एक खतरनाक पैटर्न सेट कर दिया। अगर हकीकत आपके सपनों से मेल नहीं खाती तो हकीकत को बदलो मत, बस उसे झूठा साबित कर दो।
ये तो बहुत ही चिंताजनक शुरुआत थी। दूसरा मोड़ कौन सा था?
दूसरा बड़ा मोड़ था 2010 से 2013 के बीच वॉलग्रीन्स और सेफवे जैसी बड़ी रिटेल कंपनियों के साथ साझेदारी करना।
हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात थी उनके लिए।
बहुत बड़ी। इन सौदों ने थेरानोस को रातों रात एक गुमनाम स्टार्टअप से अरबों डॉलर की कंपनी बना दिया। होम्स ने इन कंपनियों के टॉप अधिकारियों को एक ऐसे भविष्य का सपना बेचा जो था ही नहीं, और उन्हें तकनीक की ठीक से जांच करने का मौका भी नहीं दिया।
और ये टर्निंग पॉइंट क्यों था?
क्योंकि ये साझेदारियां सार्वजनिक धोखाधड़ी के रास्ते पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न थीं। अब उन पर एक ऐसा उत्पाद बाजार में लाने का भारी दबाव था जो तैयार ही नहीं था। इससे कंपनी झूठ के दलदल में और धस्ती चली गई, खासकर जब उन्होंने दूसरी कंपनियों की मशीनें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
एग्जैक्टली, इस मोड़ ने धोखाधड़ी को सीधे मरीजों के दरवाजे तक पहुंचा दिया।
और तीसरा मोड़, वो तो शायद WSJ का लेख ही होगा। हाँ बिल्कुल, 15 अक्टूबर 2015 को जॉन कैरेरो के पहले लेख का छपना तीसरा और शायद सबसे निर्णायक मोड़ था। डेविड बोइस के कानूनी दबाव और होम्स की रूपर्ट मर्डॉक से अपील के बावजूद अखबार ने सच छापा।
और उस लेख ने क्या किया?
उसने सारे बड़े धोखे उजागर कर दिए। एडिसन मशीनों का फेल होना, दूसरी कंपनियों की मशीनों का इस्तेमाल, नतीजों पर गंभीर सवाल, ये वो सार्वजनिक धमाका था जिससे थेरानोस कभी उभर नहीं पाया।
मतलब इसके बाद सब कुछ ढह गया।
हाँ, इसके बाद नियामक जांचें, साझेदारों का पीछे हटना, चौतरफा आलोचना, ये सब शुरू हुआ और सीधे कंपनी के पतन का कारण बना। दुनिया की नजरों में थेरानोस का जो तिलिस्म था वो टूट गया। ये पूरी कहानी मतलब रोंगटे खड़े कर देती है। इससे हमें क्या सबक मिलते हैं? आज के लिए क्या प्रासंगिक है इसमें?
बहुत सारे सबक हैं। पहला तो ये कि एक अच्छी लुभावनी कहानी का जादू कितना शक्तिशाली और साथ ही कितना खतरनाक हो सकता है। होम्स की कहानी में बड़े बड़े निवेशक, पत्रकार, यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिक भी बह गए।
हाँ, ये तो है।
दूसरा सबक है छोटे छोटे झूठों का वो फिसलन भरा रास्ता, कैसे वो देखते ही देखते बड़े पैमाने की धोखाधड़ी में बदल सकते हैं। मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ।
और वो विसिल ब्लोअर्स, टाइलर शॉल्स, एरिका चुंग, उनका साहस।
बिल्कुल,
तीसरा सबक वही है, सत्ता और दबाव के सामने सच बोलने के लिए असाधारण साहस की जरूरत होती है। इन युवाओं ने सच के लिए अपना करियर, अपनी मानसिक शांति, सब कुछ दांव पर लगा दिया।
और ये भी कि किसी नेक लक्ष्य के नाम पर गलत साधनों को सही ठहराना कितना खतरनाक हो सकता है।
एग्जैक्टली, अंत भला तो सब भला वाली सोच यहाँ काम नहीं करती, और हमें इसका मानवीय पहलू भी नहीं भूलना चाहिए।
हाँ, वो सबसे जरूरी है।
वो महीज जिन्हें गलत रिपोर्ट मिली, वो कर्मचारी जिनका करियर बर्बाद हुआ, जिन्हें डराया धमकाया गया, और इयान गिबन्स जैसे वैज्ञानिक की दुखद आत्महत्या, वो उस जहरीले माहौल और दबाव का सीधा शिकार बने। आज के दौर में भी ये कहानी उतनी ही प्रासंगिक है। हम हर रोज नई टेक्नोलॉजी, करिश्माई संस्थापकों, बड़े बड़े वादों के बारे में सुनते हैं, खासकर AI वगैरह को लेकर।
सही बात है।
क्या हम हमेशा कहानी के पीछे की सच्चाई देख पाते हैं? सवाल पूछना, संदेह करना, दावों की पुष्टि करना, ये आज भी उतना ही जरूरी है, शायद पहले से भी ज्यादा।
बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें तो तीन मुख्य बातें क्या होंगी जो हमें याद रखनी चाहिए? पहली बात, जो शायद सबसे ज्यादा भावनात्मक है, इस धोखाधड़ी का गहरा मानवीय मूल्य। ये सिर्फ पैसों का या नियमों का घपला नहीं था, ये हर स्तर पर भरोसे का टूटना था। मरीजों का भरोसा, उन कर्मचारियों का भरोसा जिन्होंने मिशन में विश्वास किया, जैसे इयान गिबन्स जिन्होंने अपनी जान दे दी, और उन युवाओं का भरोसा जिनका करियर और मानसिक स्वास्थ्य उस डर और धोखे के माहौल ने कुचल दिया।
दूसरी बात, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। ये कहानी द्वारपालों यानी गेटकीपर्स की विनाशकारी विफलता को उजागर करती है। ये सिर्फ होम्स और बलवानी की कहानी नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर एक सवाल है। फोमो यानी मौका चूकने की डर में अंधे निवेशक, अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा बोर्ड, बिना जांच पड़ताल किए साझेदारी करने वाले बड़े कॉरपोरेट, और बिना सवाल पूछे एक मिथक का जश्न मनाने वाली मीडिया, सबने कहीं ना कहीं भूमिका निभाई। यहां बौद्धिक सबक ये है कि करिश्माई धोखेबाजों के खिलाफ विश्वास करो लेकिन पुष्टि जरूर करो का सिद्धांत बहुत जरूरी है।
बिल्कुल। और तीसरी, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि, अपने ही बनाए प्रचार पर यकीन कर लेने का खतरा। एलिजाबेथ होम्स ने एक ऐसा वास्तविकता विकृति क्षेत्र बनाया जिसने सबको फंसाया, लेकिन शायद सबसे पहले उसने खुद को ही धोखा दिया। उनकी कहानी नैतिकता और विनम्रता के बिना पाली गई महत्वाकांक्षा के खतरों के खिलाफ एक चेतावनी है। यह दिखाती है कि धोखे के रास्ते पर चलकर हासिल किया गया सपना आखिर में एक दुःस्वप्न ही साबित होता है। छवि कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सत्य निष्ठा का पलड़ा हमेशा भारी होना चाहिए। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।